नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान एक विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत आयोजित करेगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और श्रीलंका में महिला एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप बी मैच में मलेशिया के खिलाफ बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज किया है। आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लगातार ये धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बजट में हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष राज्य का उल्लेख बजट भाषण में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन राज्यों को नहीं मिलेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए कई विकास कार्यक्रमों की घोषणा की गई है।
In every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. Let me take the example of Maharashtra, for instance. In Wharton account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadhavan in Maharashtra. 76,000 crores have been announced for that project.
आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट सरकार को बचाने का प्रयास था। उन्होंने कहा कि विपक्ष इसका विरोध करेगा।
ये तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो बजट में हमको कुछ नहीं मिला, सारे बहुत से स्टेट को निग्लेक्ट किया गया, इवन बिहार और तेलंगाना को सिर्फ उनको जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है।
श्री खड़गे ने यह भी कहा कि विकास कैसे होगा जब बजट ही संतुलित नहीं है। बाद में विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले विपक्षी सांसदों के स्थगन नोटिस को खारिज करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं को इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये सदन की हर बैठक में एक नियमित मामला बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे पहले ही संकेत दे चुके हैं कि असाधारण परिस्थितियों में ऐसे नोटिस स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 36 वर्षों में केवल 6 अवसरों पर स्थगन नोटिस स्वीकार किए गए।
I reiterate, leaders of political parties need to take a call on the issue, as it is becoming a routine daily affair in every sitting of the house. I had already indicated that in last 36 years, this mechanism has been allowed only on 6 occasions. It is only in exceptional circumstances that the same may be allowed.
उधर लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि सदन को शून्यकाल के दौरान योजनाबद्ध तरीके से बाधित करना सही नहीं है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों के नेताओं ने सदन की सुचारू कार्यवाही चलाने पर सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान विरोध प्रदर्शन उपयुक्त नहीं है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्रीय बजट समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाकर विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। आज नई दिल्ली में एक वेबिनार में श्री मेघवाल ने कहा कि बजट को विकसित भारत 2047 के नजरिए से देखा जाना चाहिए, जिसका लक्ष्य सभी को आसानी से और समय पर न्याय दिलाना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बजट पर विपक्षी दलों की टिप्पणियों पर कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग के लिए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को बजट को पढ़ने और समझने की जरूरत है। केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों को धन आवंटन में कथित भेदभाव को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने आज संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ अन्याय किया गया है और वे इसके खिलाफ संसद के बाहर और अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। सदन वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बजट पर भी चर्चा कर रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि सरकार केंद्र के विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम क्यों नहीं उठा रही है। कांग्रेस नेता ने हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अग्निवीर योजना पर सरकार की आलोचना की। चर्चा जारी है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पर्यटन क्षेत्र में अप्रत्याशित विकास हुआ है। पिछले वर्ष 2,11,00,000 पर्यटकों ने केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा की, जबकि इस वर्ष जून तक 1,08,00,000 पर्यटक वहां पहुंचे। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है और हाल ही में 28 आतंकवादियों का सफाया किया है।
2014 से 21 जुलाई तक 2,259 हुआ है, जो नहीं होना चाहिए, दुखद है, लेकिन उस पर वह राजनीति नहीं करे। आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस है मोदी सरकार की, समाप्त कर देंगे उसको।
ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। लैमी मुख्य रूप से व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी सुदृढ़ करने और काफी समय से लंबित भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर भी बातचीत करेंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय वार्ता होगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जायसवाल ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच समग्र कूटनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
साइबर अपराधियों से सावधान। शेयर मार्केट से तुरंत पैसे बढ़ाने, घर बैठे पैसे कमाने जैसे लालच देकर या फिर नकली पुलिस, सीबीआई, कस्टम अधिकारी बनकर सिम या बिजली बंद होने की धमकी देकर या फिर अनजाने नंबरों से वीडियो कॉल करके साइबर अपराधी आपको शिकार बनाते हैं। सतर्क रहें, शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान सौर्य एयरलाइंस का एक विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 18 लोगों की मौत हो गई। विमान मरम्मत कार्य के लिए 19 कर्मचारियों और तकनीशियनों को लेकर पोखरा जा रहा था। चालक दल के सदस्यों में से एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दंबर बहादुर बीके को बचा लिया गया है। हादसे के तुरंत बाद नेपाल के गृहमंत्री रमेश लेखक हवाई अड्डे पर पहुंचे। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। यह पहल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष में एक मील का पत्थर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उन नागरिकों से इस पहल से लाभ उठाने की अपील की है जिनके मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं।
इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहां हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं।
भारतीय जनता पार्टी ने आज नीट यूजी परीक्षा पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि नीट परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया, लेकिन विपक्षी दल देश को गुमराह कर रहे हैं।
राहुल गांधी देश के बच्चों को, भारत की साख को क्यों बदनाम करते हैं बार बार? ये ठीक नहीं है। पार्टी की ओर से हम बहुत भर्त्सना करते हैं विपक्ष के रवैये की और विशेष रूप से राहुल गांधी के रवैये की। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले एक डेढ़ महीने में देश में परीक्षा के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनाया, वो राजनीति करें लेकिन देश को कमजोर न करें।
श्री प्रसाद ने कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही देश भर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार ने कैंसर की दवा पर सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में आम बजट में कैंसर की 3 अतिरिक्त दवाइयों पर सीमा शुल्क में छूट देने की घोषणा की थी। इन दवाओं में स्तन कैंसर के लिए ट्रेस्टुजुमैब डेरेक्सट्रिकन, फेफड़ों के कैंसर के लिए ओसीमर्टिनिब और पित्त तथा फेफड़ों के कैंसर के लिए डुर्मामुलैब शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश जारी रहेगी। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के पहाड़ी इलाकों में जगह जगह भूस्खलन के कारण करीब 100 ग्रामीण सड़कें यातायात के लिए बंद हैं।
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 2 दिन से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और भूस्खलन से 3 राज्य मार्ग, 1 बॉर्डर मार्ग और करीब 100 मोटर मार्ग पर यातायात अवरुद्ध है। सभी मार्गों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर उत्तरकाशी जिले में नैताला और सेंज के पास बाधित गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और डाबरकोट के समीप अवरुद्ध यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में राज्यों के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
मौसम विभाग ने आज के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ और सतारा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार रायगढ़ जिले में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा और अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जबकि सतारा में घाट क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। गुजरात में सुबह से ही बारिश हो रही है। राज्य की 150 से अधिक तहसीलों में सुबह 12 बजे तक हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण गुजरात में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि सौराष्ट्र क्षेत्र में बारिश में कमी आई है। हालांकि देवभूमि द्वारका जिला अभी भी जलभराव के कारण बाढ़ से प्रभावित है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में एक सप्ताह से हो रही लगातार वर्षा के बाद राज्य में अब तक लगभग 48% बारिश दर्ज की जा चुकी है। श्रीलंका के दाम्बुला में महिला एशिया कप क्रिकेट में बांग्लादेश और मलेशिया के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 6 ओवर में बिना विकेट खोए 47 रन बना लिए हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ग्रुप बी के एक अन्य मैच में श्रीलंका का सामना आज थाईलैंड से शाम 7 बजे से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के दौरान एक विमान दुर्घटना में 18 लोगों की मौत। सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत आयोजित करेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।